नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे का दौरा किया और यहां भीड़ से निपटने के तरीकों पर हितधारकों के साथ बात की। हाल ही के दिनों में हवाई अड्डे पर लंबी कतारें लगने और इंतजार की लंबी अवधि को लेकर यात्रियों ने शिकायतें की थी। इसी पृष्ठभूमि में सिंधिया ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हवाई अड्डे का दौरा किया। अधिकारियों ने कहा कि मंत्री ने भीड़ को कम करने के लिए किए गए प्रबंधों का निरीक्षण किया और विशिष्ट समय सीमा के साथ अहम निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि उपायों को जल्द ही लागू किया जाएगा और अगले 6 से 7 दिनों में बदलाव दिखने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से यात्री हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा अवधि अधिक होने की शिकायत कर रहे हैं और कुछ ने हवाई अड्डे पर भीड़ की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की हैं। ब्रिटेन के व्यापार मंत्री केमी बादेनोच FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते के 6th दौर पर बातचीत शुरू करने के लिए सोमवार को नई दिल्ली पहुंची। वो अपने भारतीय समकक्ष पीयूष गोयल से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। भारत और ब्रिटेन के वार्ताकारों के दलों के बीच जुलाई के बाद ये पहली औपचारिक बैठक होगी और ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली वार्ता होगी। बादेनोच ने ट्वीट किया, मैं ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार वार्ता के 6th दौर की शुरुआत करने के लिए नई दिल्ली पहुंच गई हूं। इस समझौते की प्रगति को गति देने के लिए अपने समकक्ष पीयूष गोयल से मुलाकात भी करूंगी। उन्होंने आगे कहा, दोनों ही देश बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं लेकर और पारस्परिक लाभदायक समझौते की दिशा में मिलकर काम करने की इच्छा शक्ति के साथ एक मंच पर आए हैं। मैं उन अवसरों को लेकर बहुत उत्साहित हूँ जो हम ब्रिटेन के कारोबार के लिए सृजन कर सकते हैं। एलॉन मस्क ने मालिकाना हक वाली माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन सर्विस ट्विटर ब्लू को रिलॉन्च कर दिया है। ट्विटर ब्लू सर्विस के साथ ट्विटर यूजर्स को ब्लू टिक के अलावा 1080 पिक्सल वीडियो पोस्ट करने और ट्वीट को एडिट करने का विकल्प मिलता है। ये सब्सक्रिप्शन सर्विस 12 दिसंबर से एक बार फिर से उपलब्ध करा दी गई है। बता दें कि ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस का यह तीसरा वर्जन है जो पहले वर्जन से काफ़ी अलग है। भारत और श्रीलंका ने चेन्नई तथा जाफना के बीच हवाई सेवा सोमवार से बहाल कर दी। इसे कोविड महामारी की वजह से 3 साल पहले बंद कर दिया गया था। हवाई अड्डे एवं विमानन सेवाओं के चेयरमैन उपुल धर्मदासा ने बताया कि हवाई सेवा बहाल होने के बाद पहला विमान आज सुबह जाफना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। अलायंस एयर सर्विस के इस विमान का यहां स्वागत किया गया। इसमें 14 चुनिंदा यात्री सवार थे जिनमें से ज्यादातर अधिकारी थे। अलायंस एयर जाफना और चेन्नई के बीच सप्ताह में 4 उड़ान सेवाएं उपलब्ध करा रही है। पर्यटन श्रीलंका की विदेशी मुद्रा आय का प्रमुख स्रोत है। इस कदम से नकदी संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश के पर्यटन क्षेत्र को मदद मिलने की उम्मीद है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी की शुरुआत के बाद से ही श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। टाटा समूह की कंपनी एयर इंडिया अपेक्षाकृत छोटे आकार के 50 बोइंग 737 मैक्स विमान खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। कंपनी ये विमान सस्ती अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं देने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए खरीद रही है। मामले से जुड़े सूत्रों ने कहा कि ये सौदा बड़े विमान के ऑर्डर का हिस्सा होगा। इसको लेकर कंपनी बोइंग और एयरबस SE के साथ चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से ही बात कर रही है। घाटे में चल रही एयर इंडिया की अगले 3 साल में अपने विमानों के बेड़े को 3 गुना करने की योजना है। टाटा समूह ने इस साल जनवरी में एयर इंडिया का अधिग्रहण किया था। एयरलाइन कारोबार को सुदृढ़ बनाने के लिए टाटा समूह ने अपनी घरेलू इकाई एयर एशिया इंडिया के एयर इंडिया में विलय की भी घोषणा की है। कंपनी एयरबस A320 विमानों के बेड़े का परिचालन करती है। फिलहाल एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 बोइंग 737 विमानों का बेड़ा है। सूत्रों ने कहा कि सौदे पर आगे की चर्चा के लिए एयर इंडिया और बोइंग के अधिकारियों की सोमवार को बैठक होने की संभावना है। डालमिया भारत लिमिटेड ने सोमवार को JP समूह की प्रमुख कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड तथा सहयोगी कंपनियों के सीमेंट कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की। ये अधिग्रहण 5,666 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर किया जाएगा। डालमिया भारत ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी पूर्ण अनुषंगी डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड तथा उसकी संबंध कंपनियों से क्लिंकर सीमेंट और बिजली संयंत्र के अधिग्रहण को लेकर पक्का समझौता किया है। सौदे में 94 लाख टन सालाना क्षमता की सीमेंट इकाई, 67 लाख टन क्लिंकर क्षमता तथा 280 मेगावाट क्षमता का तापीय बिजली घर शामिल है। ये सौदा 5,666 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर किया गया है। डालमिया भारत ने कहा, ये संपत्तियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। इस अधिग्रहण से डालमिया को देश का मध्य क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये कंपनी के वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 7.5 करोड़ टन और 2030-31 तक 11 से 13 करोड़ टन क्षमता की सीमेंट कंपनी बनने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iinjansatta.com पर नमस्कार।